अगर कोई पूछे तो बोल देना कि हम कुछ काम से गए थे। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, सबने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ध्रुव और आहान भी अब उनके साथ हो लिए थे। और तहखाना, जो थोड़ी देर पहले उसकी दीवारें हर चीज से खून से सनी हुई थीं, वो अब एकदम क्लीन हो चुका था और पहले जैसा खूबसूरत हो चुका था। और जल्दी ही वे सब मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं अबीर सिंह राठौर इस वक्त शहर के फेमस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और अरमान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अरमान ने उसे रात में ही मिलने का टाइम दिया था। लेकिन अरमान वहां नहीं पहुंचा था और गुस्से में अबीर सिंह राठौर उसका इंतजार करते करते कितनी ही देर तक वहां बैठा रहा। और जब उसे इस बात की खबर मिली कि उसके सारे आदमी गायब हैं, तब तो उसका पारा और भी ज्यादा चढ़ चुका था और वो समझ चुका था कि जरूर अरमान सिंघानिया ने अपनी चाल चलती है और उसके सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। कितनी ही देर तक अबीर सिंह राठौर ड्रिंक पर ड्रिंक करता रहा और नशे में वो पूरी तरह से टल्ली हो गया। और तभी जैसे ही वो उठकर जाने लगा तो किसी से बड़ी बुरी तरह से टकरा गया। अबीर सिंह राठौर उस वक्त जिससे टकराया वो कोई और नहीं बल्कि वीर रायचंद था। वीर को वहां देखकर अबीर पूरी तरह से हैरान हो चुका था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करता तब तक उसकी आंखें बंद हो गई थीं। और वीर अबीर को लेकर मुस्कुराते हुए अपने साथ ले जाने लगा और आज उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर आस्था को सुलाने के बाद नानी माँ कितनी ही देर तक आस्था की ओर देखती रही। आस्था सोई हुई बड़ी ही प्यारी और मासूम लग रही थी। वेल, नानी माँ आस्था को अपने कमरे में सुलाने के बाद सीधा हॉल में आ गई थीं। और जैसे ही वो हॉल में आई तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि इस वक्त हॉल में सभी सूट बूट के साथ अच्छी तरह से तैयार हुए बैठे हुए थे, यानी कि आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, साथ ही साथ अरमान सिंघानिया, सभी के सभी एकदम तैयार होकर बैठे हुए थे। और मारिया और टाइगर एकदम ब्लैक ड्रेस में वहां खड़े हुए थे, बिल्कुल बॉडीगार्ड के गेटअप में। अब नानीमा हैरान हो गई, इतनी सुबह सुबह ये लोग कैसे तैयार हो गए, क्योंकि बेसिकली इस वक्त सब उठकर जॉगिंग वगैरह किया करते थे और आहान तो कितनी ही देर तक हाफ निकल में घूमता रहता था, लेकिन अब तो सबके सब एकदम परफेक्टली तैयार थे। नानीमा को हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल वो उन सबके साथ जाकर बैठ गई और उन सबकी ओर देखकर बोली, वो बेटा जी, अच्छा हुआ आप सब हमें यहीं मिल गए, वो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तब सब हैरानी से नानी माँ को देखने लगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि कहीं कल रात हम सब घर पर नहीं थे, कहीं ये बात नानी माँ को पता तो नहीं चल गई। लेकिन अगले ही पल वे सब अपने चेहरे को एकदम नॉर्मल करते हैं। फिर आकाश शांत स्वर में बोला, जी जी नानी माँ, बताइए क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? जैसे ही आकाश ने नानी माँ से ये पूछा, तब नानी माँ कुछ देर सोचती रहीं और फिर हिचकिचाते हुए बोली, वो बेटा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम आस्था बिटिया को अपने गांव लेकर जाना चाहते हैं। क्या या? अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान तुरंत अपने चेयर पर से उठ खड़ा हुआ और घूरकर नानी माँ को देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो नानी माँ ने कुछ ऐसा मांग लिया था जो पॉसिबल नहीं था। तब सुमित कन्फ्यूजन से नानी माँ की ओर देखते हुए बोला, लेकिन नानी माँ आप अचानक से आस्था को गांव क्यों लेकर जाना चाहती हैं? पूरी बात बताइए, बात क्या है? क्योंकि सुमित देख चुका था कि इस वक्त अरमान की आंखें आग उगल रही थी और अरमान आस्था के मामले में किसी का भी लिहाज नहीं करने वाला था, चाहे वो नानी माँ हो या फिर कोई और हो। तो इसीलिए सुमित ने अरमान के कुछ कहने से पहले ही नानी माँ से सवाल कर लिया था। तभी नानी माँ तुरंत बोली, अरे बिटवा, हम ये नहीं कह रहे कि हम आस्था बिटिया को अभी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगले महीने मेरी बेटी और दामाद की बरसी है और उस दिन आस्था हर साल अपने माँ बाप का पिंडदान करती हुई आई है, इसीलिए हम आस्था को अगले महीने वहां लेकर जाना चाहते हैं, उसके बाद हम गाँव में ही रुक जाएंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने पूरी बात बताई, सभी के चेहरे थोड़े से मायूस से हो गए, क्योंकि नानी माँ ये बोलते हुए नानी माँ की आंखें भर आई थीं। आखिरकार नानी माँ की बेटी की बरसी थी तो इसीलिए उनकी आंखें भर आई थीं। आहान तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और नानी माँ को उसने गले से लगा लिया और दिलासा देते हुए बोला, नानी माँ आप रोना नहीं, आप मुझे उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं,
प्लीज आप हमेशा मुस्कुराती रहिए ना, प्लीज। ऐसा बोलकर आहान नानी माँ को शांत करने लगा। तब नानी माँ मुस्कुरा दी और फेंकी मुस्कुराहट से बोली, अरे नहीं बेटवा, हम नहीं रोते हैं। बस कुछ कुछ इंसिडेंट जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब जैसे ही नानी माँ ने इतनी गहराई वाली बात बोली, अरमान अपनी जगह से उठा और नानी माँ के पास जाकर बोला, डोंट वरी, मैं खुद आस्था को गांव लेकर आऊंगा, आप परेशान मत होइए नानी माँ। अरमान ने बड़े ही कोल्ड वॉइस, बड़े ही धीमे स्वर में ये कहा। तब नानी माँ मुस्कुरा दी और अरमान के सर पर हाथ रखते हुए बोली, जीते रहो बेटा, जीते रहो, वरना हम कब से ऐसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि न जाने आप इजाजत देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अब आप तो आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुरा दी। तभी दादाजी की आवाज आई, अरे तुम सबके सब आज इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए, माजरा क्या है? और ध्रुव, तुम तो अपने फ्लैट में रुकने वाले थे ना, और ये नालायक आज भी तुम्हारे साथ रुकने वाला था। अब दादाजी के सवाल पर दोनों हड़बड़ा गए और तब ध्रुव हड़बड़ाहट में बोला, हाँ हाँ दादाजी, रुकने वाले तो हम मेरे फ्लैट में ही थे, लेकिन ये आहान नहीं माना और रात को ही ये मुझे यहाँ लेकर आ गया, और अब सुबह सुबह हमें एक्चुअली जरूरी काम है, तो बस इसीलिए हम सब तैयार हैं, हम सब एक साथ जा रहे हैं। अब जैसे ही ध्रुव ने ये बोला, दादाजी उन सबको घूर कर देखने लगे और कहीं ना कहीं दादाजी की आंखों में काफी सारे सवाल थे। ऐसे नहीं थे कि दादाजी उन्हें जानते नहीं थे, क्योंकि उन सबकी आंखें पूरी रात ना सोने की वजह से एकदम लाल हो रखी थी। तभी दादाजी बोले, नहीं नहीं, तुम लोगों को आज कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आस्था बेटी का आज कॉलेज का पहला दिन है, तो इसीलिए कॉलेज जाएगी, तो सब पहले उसे छोड़ने जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आस्था बेटी को इतना सा भी किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस हो, तो इसीलिए हमें आस्था बेटी का इस वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और ये ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा। आस्था बेटी को हमें इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने देनी है। ऐसा बोलकर दादाजी अब उन सबको एक साथ जाने से मना करने लगे। दादाजी की बात सुनकर वे सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और आस्था का नाम आने पर अरमान तुरंत अपने कमरे की ओर देखने लगा, और क्योंकि वे लोग नानी माँ के कमरे में आने से केवल 5 मिनट पहले ही आए थे और कुछ देर हॉल में रुककर वो सब अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए ही जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले क्योंकि नानी माँ ने देख लिया तो उन्हें बहाना बनाना पड़ा। बल तभी अरमान बिना इमोशंस के बोला, मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त बहुत डेस्परेट था, उस वक्त आस्था को देखना चाहता था। और जैसे ही अरमान सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा, तुरंत नानी माँ ने अरमान को रोकने के लिए आवाज लगा दी। अब जैसे ही नानी माँ ने इस तरह से आवाज लगाई, अरमान के कदम खुद ब खुद रुक गए। कहीं ना कहीं अरमान को यह भी महसूस हुआ कि ना जाने नानी माँ उसे क्या कहने वाली है, लेकिन नानी माँ तुरंत बोल पड़ी, आस्था बिटिया हमारे कमरे में है।
अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान के माथे पर बल पड़ गए। वहीं सब के सब पूरी तरह से हैरान हो गए। कहीं न कहीं सबको अंदेशा हो गया था कि शायद रात को आस्था उठ गई होगी, और अगर उसने अरमान को अपने कमरे में नहीं देखा होगा तो इसका मतलब उसके मन में कितने ही सारे सवाल चल रहे होंगे। वहीं दादाजी अब पूरी तरह परेशान हो उठे थे और वो बारी बारी से अब सबको देखने लगे। कहीं न कहीं उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका कर रहा था। वहीं नानी माँ की बात सुनकर अरमान ने एक नज़र सबकी ओर देखा और उसके बाद नानी माँ के कमरे में जाने लगा। कहीं ना कहीं आज अरमान का दिल भी धड़क रहा था कि ना जाने आस्था क्या क्या सवाल करेगी और उसे उसके बारे में क्या क्या पूछेगी, और वो आस्था को झूठ नहीं बोलना चाहेगा। अरमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, किस तरह से वो खुद को आस्था का सामना करने के लिए तैयार करे। और उसने आस्था को बेड पर सोते हुए देखा। आस्था सोई हुई बड़ी ही प्यारी और एकदम मासूम लग रही थी। कितनी ही देर तक अरमान आस्था के मासूम से चेहरे में खोया रहा और उसके पास बैठकर उसके पेट को सहलाता रहा, तो कभी उसके सर को सहला रहा था। वहीं आस्था, जो नानी माँ का साथ पाकर, उनके प्यार पाकर एक गहरी नींद में सो चुकी थी। अब जैसे ही अरमान ने आस्था के पेट को छुआ, आस्था तुरंत उठकर बैठ गई और तुरंत बोली, अरमान जी। अब अरमान जो आस्था के सामने था, आस्था ने तुरंत अरमान को गले से लगा लिया। अरमान ने भी बदले में आस्था को बैक हक किया और उसके कंधे पर चूम लिया। तब आस्था झट से बोली, आप ठीक तो है ना? आस्था ने जैसे ही ये सवाल किया, अरमान चौंक गया। उसे तो लगा था कि आस्था उठते ही उसे सवालों की झड़ी लगा देगी और बोलेगी, रात आप कहाँ चले गए थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये क्या,
आस्था ने तो सीधा सवाल किया था कि आप ठीक तो है ना। तब अरमान ने मुस्कुराकर आस्था की ओर देखा और बोला, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरमान की बात सुनकर आस्था मुस्कुरा दी। वेल, आस्था अरमान से पूछना चाहती थी कि रात को वो कहाँ गया था, लेकिन कुछ सोचकर आस्था उस पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अगर वो इस तरह से अरमान सिंघानिया से सवाल करेगी तो कहीं अरमान को ये ना लगे कि आस्था उस पर शक कर रही है, और आस्था अपने इस खूबसूरत और हेल्दी रिलेशन में किसी तरह का कोई शक या किसी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं चाहती थी। वेल, तब आस्था अरमान से थोड़ा सा अलग हटकर बैठी और कुछ सोचते हुए बोली, ओह शिट, हम तो भूल ही गए, आज तो हमें कॉलेज भी जाना है, हमें देर हो जाएगी, मुझे लगता है कि हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए। आस्था की बात सुनकर अरमान ने केवल बिना किसी इमोशंस के उसकी तरफ देखा, क्योंकि अरमान का इरादा आस्था के साथ टाइम स्पेंड करने का था। वो नहीं चाहता था कि आस्था कॉलेज जाए, लेकिन अभी आस्था को सीधे सीधे वो मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी ने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, और पहले भी आस्था ने कॉलेज ज्वाइन किया था, लेकिन अरमान ने केवल 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ही उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया था। लेकिन अभी अगर वो ऐसा करता है तो शायद आस्था को कुछ खास ये पसंद ना आए, इसीलिए अरमान ने एक हल्की सी स्माइल देकर और बोला कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, वो खुद उसे छोड़ने के लिए जाएगा। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था खिल उठी और फटाफट से वो अपने कमरे में जाने लगी। वहीं अरमान आस्था से मिलने के बाद सीधा एक बार फिर से हॉल में आ गया। नानी को गांव में लेकर जाने वाली बात दादाजी को भी बता दी थी। दादाजी भी मुस्कुरा उठे और खुश होकर बोले कि बहन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम आपके गांव आ सकते हैं। अब नानी माँ ये सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, अरे भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे गांव में आना चाहते हैं, हमारे गांव के तो भाग ही खुल जाएंगे, इतने अमीर लोग वहां आएंगे तो, और क्यों नहीं आएंगे, आपका अपना घर है। क्योंकि जब से नानी माँ सिंघानिया मेंशन में आई थी, तब से नानी माँ ने दादाजी को पिशाच भूत की इतनी सारी कहानियां सुनाई थी और इतनी सारी औरतों के बारे में बातें बताई थी, तो जिसकी वजह से दादाजी भी गांव में जाने के लिए एक्साइटेड थे और वहां जाकर उस पिशाच वाले भूत को, पिशाच वाले पेड़ को, साथ ही साथ उन सब लेडीज को जिन्होंने नानी माँ से झगड़ा किया था, जिनके किस्से नानी माँ हर रोज दादाजी को सुनाती हैं, तो वो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे।